Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُدْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَشَفِيعَنَا وَشِفَاءَ صُدُورِنَا وَغَوْثَنَا وَغَيَاثَنَا وَمُغِيثَنَا وَمُعِينَنَا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بار بار رسالت میں درود پاک نگران پیش اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صاحب صدر محفل محبوب المشائخ حضرت پیر طریقت مختوم زادہ سید محبوب اشرف اشرفی الجیلانی دامن برکاتہم العالیہ حضرت علامہ مولانا عبدالحفیظ معرفی صاحب دامن برکاتہم العالیہ اور حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مہانہ درس قرآن کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے اور اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کا یہ پروگرام ہے. آپ حضرات بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ تشریف لائے اور میں بھی حاضر ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکت سے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وقت مختصر ہے اور اس مختصر سے وقت میں میں کوشش کروں گا کہ رمضان مبارک کے فضائل اور اس ماہ مبارک میں جو جو بھی اہم امور ہم تمام مسلمان انجام دے رہے ہیں اس کے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں. وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت بینات کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ارشاد ربانی ہوا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. رمضان اور قرآن دونوں لازم اور ملزوم ہیں. جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے یعنی ابھی پہلا روزہ بھی نہیں ہوا جب ہم چاند دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کون سا کام کرتے ہیں بتائیے؟ تراویح. سب نہیں پڑھتے تو سب نہیں بول رہے پڑھتے ہیں میرے خیال سے نہیں پڑھی کچھ لوگ سب سے پہلا تراویح اور تراویح میں قرآن کریم. رمضان مبارک قرآن کا موسم بہار जिस कसरत से इस महीने में कुरान पढ़ा जाता है
किसी महीने में नहीं पढ़ा जाता।
और ये तरावी रमजान की जीनत है, तरावी रमजान की रौनक है, तरावी मुसलमानों की एक इज्तिमाई सूरत है। अगर इस तरावी को रमजान से निकाल दिया जाए सारी रौनक खत्म हो जाए। आप देखते हैं मस्जिदों में लोग दौड़े जा रहे हैं, तरावी पढ़नी है, कुरान सुनना है, खुफाज जिनको सुनाना है उससे पहले दौड़ कर रहे हैं। कोई सुबह पढ़ रहा है, कोई दोपहर को पढ़ रहा है, कोई शाम को पढ़ रहा है, मुझे रात को तरावी में पढ़ना है। कोई पढ़ने के लिए दौड़ कर रहा है, कोई सुनने के लिए दौड़ कर रहा है। रमजान की रौनकों पर रौनकें लगी हैं। तो कुरान और रमजान दोनों लाजिम अमल दो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात मुबारक में बइख्तिलाफ रिवायत दो या तीन दिन नमाज तरावी की इमामत फरमाई। जिस तरह आज इमाम के साथ होती है ऐसे नहीं, सरकार ने दो या तीन दिन। उसके बाद सहाबा की इतनी कसरत हुई कि मस्जिद नबवी में जगह नहीं रही, क्योंकि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन इस बात के हरीफ होते थे कि कोई नया अमल हमारे सामने आए हम उसे कर कर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में मकाम हासिल कर, हम नामे अमल में नेकियां हासिल कर। सहाबा की कसरत हुई, मस्जिद नबवी में जगह नहीं, लेकिन हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शान नबुव्वत से बाहर तशरीफ नहीं लाए और सहाबा सारी रात बैठे रहे, सबकी निगाहें काशाने नबुव्वत के दरवाजे पर लगी हुई हैं कि अभी ये दरवाजा खुलेगा और आका के जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे नमाज तरावी की इमामत फरमाएंगे। सारी रात सहाबा बैठे रहे, सरकार तशरीफ नहीं लाए, यहां तक के फजर की अजान हुई। फजर की अजान हुई, हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए मुसल्ला इमामत पर, फजर की इमामत फरमाई और उसके बाद मिंबर पर रौनक फरोज। सरकार ने फरमाया सुनो, तुम्हारी रात की हालत मुझसे पोशीदा नहीं थी, यानी जिस जाप और शौक से तुम लोग आए थे तरावी पढ़ने वो हालत मुझसे पोशीदा नहीं थी। मैं इसलिए बाहर नहीं आया कि कहीं तुम्हारे ज़ौक और शौक को देखकर अल्लाह तबारक व तआला इस नमाज को फर्ज करार दे दे और आगे चल के तुम इसको अदा करने से आजीज हो जाओ, तरावी फर्ज ना हो जाए, इसलिए मैं नहीं आया। नबी करीम अलैहिस्सलाम का जमाने मुबारक का गुजर गया, सरकार ने जाहिरी तौर पर पर्दा फरमा लिया। फिर जमाना आया सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। रमजान मुबारक का महीना आता, मुसलमान अलहदा अलहदा तरावी पढ़ते, जमात के साथ नहीं। दो इधर है तो दो इधर है, एक इधर है एक उधर है, पढ़ते मस्जिद में लेकिन अलहदा, एक इमाम के पीछे नहीं। उनका जमाना गुजर गया। अब जमाना आया सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने देखा कि मुसलमान मस्जिद में अलहदा अलहदा नमाज पढ़ रहे, तरावी की जमात पूरी एक इमाम के पीछे नहीं, अपनी अपनी तरफ। आपने सहाबा को बुलाया, फरमाया कि मैं ये चाहता हूं ये मुसलमान जो अलग अलग तरावी पढ़ रहे हैं क्या ही अच्छा हो इन सब को एक इमाम के पीछे जमा कर दिया जाए, यानी एक इमाम हो बाकी सब मुक्तदी हो। साहबा ने कहा कि हाँ ये बात तो बहुत अच्छी, इसलिए कि सरकार से तो साबित है, हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलाम ने इमामत खुद फरमाई थी, सारे साहबा पीछे मुक्तदी थे। साहबा ने इस चीज को पसंद किया और तजवीज थी सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस बात को याद रखिए, एक साहबी जिनका नाम था उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी आवाज बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारा कुरान पढ़ते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, फरमाया उबई तुम हमारे इमाम बन जाओ, हम सब तुम्हारे मुक्तदी बन जाएंगे।
हम जमात के साथ तरावी पढ़ेंगे।
उन्होंने कहा ठीक है। हाफिज़े कुरान थे, तारीख़े कुरान थे, बेहतरीन आवाज थी, मुसल्ले पर खड़े हो गए।
पहली मर्तबा बाकायदा तौर पर एक इमाम के पीछे तरावी पढ़ने का एहतमाम अगर हुआ है
तो सैयदना फारूक आज़म के दौर में
पहली मर्तबा।
और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। सहाबा ने इस चीज को पसंद किया,
बल्कि सहाबा ने कहा नेमुल बिदअते हाजा, नेमुल बिदअते हाजा, ये कितनी अच्छी बिदत है, कितनी अच्छी बिदत है। इससे पता चला कि बिदत अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है।
समझ गए ना? आज के लोग तो हर चीज को कहते हैं ना, ये बिदत है, ये बिदत है, ये फातिहा बिदत है, ये फला चीज बिदत है।
तो बिदत की किस्में हैं, बिदत हसना और बिदत सैया। बिदत हसना का मतलब अच्छी बिदत, जिससे दीन को फायदा हो। तरावी बिदत है, लेकिन बिदत हसना है, दीन के लिए फायदेमंद। कुरान पर आराम जेर जबर पेश लगाना बिदत है, लेकिन बिदत हसना है, पढ़ने वालों के लिए फायदा है। मस्जिदों को पुख्ता बनाना, मेहराब मिंबर बनाना, मीनार बनाना बिदत है, हुजूर के जमाने में नहीं, लेकिन बिदत हसना है, दीन के लिए फायदा है, दीन की शान नजर आ रही है। ये सारी चीजें जो हैं ये बिदत है, लेकिन बिदत हसना।
तो जब तरावी की बाकायदा जमात हुई तो सहाबा ने क्या कहा,
नेमुल बिदत हाजा, ये कितनी अच्छी बिदत है।
अब सिलसिला शुरू हो गया।
फारूक आजम की शहादत हो गई,
उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला मसनद खिलाफत पर रवाना मफरूज हुए, तरावी का सिलसिला जारी रहा।
इसी तरह एक इमाम के पीछे सारे पढ़ते रहे।
मसाजिद
हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई, हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला का दौर आया।
अब रिवायत में आता है हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला
अपने दौरे खिलाफत में गली से गुजर रहे हैं,
एक मस्जिद के आगे से गुजरे, अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। तरावी की जमात को
आवाज आ रही है।
रिवायत में आता है हजरत अली शेरे खुदा रजी अल्लाह तआला ने अपने हाथ दुआ के लिए उठाए और उनकी मुकद्दस आंखों से आंसू जारी हो गए।
हजरत अली ने क्या दुआ की? मस्जिद में से कुरान की आवाज सुनी कि मुसलमान तरावी पढ़ रहे हैं जमात के साथ। हजरत अली शेरे खुदा रजी अल्लाह तआला ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा नफिर कब्र उमर कमा नफर मसाजिद अल्लाह बिल कुरान, ए अल्लाह उमर की कब्र को अपने नूर से रोशन कर दे जिसने तेरी मस्जिदों को कुरान से रोशन कर दिया। तेरी मस्जिदों को कुरान से रोशन कर दिया।
जब तक तरावी की जमात होती रहे और इंशाअल्लाह कयामत तक होती रहे,
कयामत तक इसका सवाब फारूक आजम की रूह मुबारक को पहुंचता था।
फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने दीन में कोई ऐसा तरीका इजाद किया, राय किया
कि जिससे दीन को नुकसान है, तो जितना गुना अमल करने वाले को उतना ही उसके जारी करने वाले, और जिसने दीन में कोई ऐसा तरीका इजाद किया कि जिस पर अमल करने से दीन को फायदा है, दीन की इशारत है, दीन की मावनत है, जितना सवाब उसके जारी करने वाले को उतना ही उस पर अमल करने वाले।
तो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने
दीन में ऐसा बेहतरीन तरीका इजाद किया कि कयामत तक तरावी होती रहेगी, मुसलमान अमल करते रहेंगे,
फारूक आजम की रूह मुबारक को सवाब पहुंचता था। इसको कहते हैं सदका जारिया,
ऐसा काम कर दिया जो कयामत तक जारी है, कयामत तक सवाब होगा।
और यह हकीकत है कि अगर तरावी में कुरान करीम ना पढ़ा जाए, जिस इहतमाम से हम पढ़ते हैं, इस मस्जिद में खत्म कुरान है, उस मस्जिद में खत्म कुरान है, कहीं 10 को है, कहीं 20 को है, कहीं 27 को है, मुख्तलिफ मसाजिद में है,
तमाम अफवाह पढ़ रहे हैं, अगर इसको खत्म कर दिया जाए तो हाफिज ही ना रहे। हाफिज हिफ्ज इसीलिए करता है कि मैं रमजान में पढ़ूंगा, रमजान में पढ़ूंगा, रमजान में कुरान सुनाऊंगा। पता चला कि कुरान और रमजान दोनों लाजिम और मलजूम है, और तरावी रमजान की जीनत है। तरावी रमजान की शान है और तरावी मुसलमान की पहचान है। जहाँ जहाँ पूरी कायनात में मुसलमान मौजूद हैं, जैसे ही रमजान मुबारक का चांद होता है वैसे ही तरावी शुरू हो जाती है। रमजान की शान नजर आ रहा है, सारे मुसलमान एक इमाम के पीछे है। कुरान मजीद फरकाने हमें सुन, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान, सबसे ज्यादा छपने वाली किताब कुरान, सबसे ज्यादा समझी जाने वाली किताब कुरान, सबसे ज्यादा जिसके तर्जुमे हुए वो कुरान। कोई किताब इतनी ज्यादा नहीं पढ़ी जाती जितना कुरान पढ़ा जाता है। और कुरान की शान क्या है, एक किताब आप एक दफा पढ़ लें आपका दिल भर जाए। कोई कहानी आप सुन लें किसी किताब में, कोई बहुत ही दिलचस्प किताब हो जिसमें लतीफे हो, दिलचस्प कहानियां हो, बेहतरीन किस्से हो, आपने शुरू से आखिर तक पूरी किताब पढ़ ली। अब दोबारा कोई पढ़ेगा यार ये तो मैंने पढ़ी ली, ये तो मैंने पढ़ लिया, आगे बताओ आगे कुछ। इंसान एक किताब पढ़ ले, एक मरतबा पढ़ ले उसका दिल भर जाता है। दोबारा अगर कोई अव्वल तो वो खुद पढ़ेगा नहीं, और दूसरा अगर पढ़ाए उसको सुनाए पढ़कर कहेगा तो मैं पढ़ चुका हूं। लेकिन कुरान की शान ये है कि इंसान बार बार पढ़ता है, बार बार मजा आता है। जितनी मरतबा पढ़ता है उतनी मरतबा मजा आता है, जितनी मरतबा पढ़ेगा उतनी नेकियां उसे मिलेंगी। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुरान शफाअत करेगा कयामत के दिन अपने पढ़ने वालों की। और जिसने इसको पढ़ा, और एक इतनी प्यारी हदीस है कि आप सुने तो आपका ईमान ताजा हो जाए, दिल खुश हो जाए, खास तौर पे उनके लिए कि जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रवानी से कुरान पढ़ता है उसे एक अजर मिलेगा, और जो अटक अटक कर पढ़ता है यानी पढ़ना नहीं आता, पढ़ने में मुश्किल है फिर भी पढ़ रहा है उसे दो अजर मिलेगा। कितना करम है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि अगर तुमने जिंदगी में नहीं पढ़ा, अब तुम बुढ़ापे के मंजिल को पहुंच चुके हो, पढ़ना चाहते हो पढ़ते रहो, तुम्हें डबल सवाब मिलेगा। किसी की जबान में रुकना था नहीं पढ़ सकता, उसको भी चाहिए कि पढ़े, इसलिए कि जो रवानी से पढ़ेगा एक अजर है, जो अटक अटक के पढ़ेगा दो अजर। अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम। फरमाया जिसने कुरान को हिफ्ज कर लिया, अपने सीने में महफूज कर लिया, कल कयामत के दिन वो अपने खानदान के ऐसे 10 अफराद की शफाअत करेगा जिनके आमाल की वजह से उन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी हो, यानी उनके अमल ऐसे होंगे कि जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी, लेकिन उस हाफिज़े कुरान की वजह से उनकी भी बख्शिश हो जाएगी। कुरान अपने पढ़ने वाले की शफाअत करेगा, हाफिज़े कुरान अपने खानदान के अफराद की शफाअत करेगा। ये तमाम हदीसें, ये तमाम चीजें हैं। अफसोस कि ये तमाम चीजें होने के बावजूद फिर हम कुरान को नहीं पढ़ पाते। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को दफन किया जाएगा, एक आदमी उसके सर की तरफ से कब्र में दाखिल होने की कोशिश करेगा, तो उसका सर कहेगा ऐ दाखिल होने वाले ठहर जा, यहां से दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए कि ये जिंदगी में सूरह मुल्क पढ़ा करता था। फिर एक शख्स उसके पैरों की तरफ से दाखिल होगा, कोशिश करेगा तो उसके पैर कहेंगे दाखिल होने वाले तो दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए कि जिंदगी में ये सूरत पढ़ा करता। फिर उसके सीने की तरफ से दाखिल होने की कोशिश करेगा, गरज ये कि कब्र में जिस जेहत से जिस सिम से दाखिल होने की कोशिश करेगा उसको रोक दिया जाएगा, इसलिए कि जिंदगी में ये सूरह मुल्क पढ़ा करता। फरमाया कुरान में एक सूरत ऐसी है जिसमें 30 आयतें हैं, ये अपने पढ़ने वाले के सिलसिले में कयामत के दिन रब से झगड़ा करेगी यहां तक कि उसे जन्नत में दाखिल करा दे। और वो कौन सी सूरत है, सरकार ने फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, सूरह मुल्क। अगर हम किसी सूरत को अपना मामूल बना लें, किसी सूरत को मुसलसल पढ़ते रहें तो हमें यकीन कर लेना चाहिए कि वही सूरत इंशाअल्लाह कयामत के दिन रब की बारगाह में हमारी सिफारिश करेगी। फरमाया जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है शैतान वहां से मीलों दूर भाग जाता है, दूर भाग जाता है। लेकिन आज तो शैतान घर में मौजूद, घर में मौजूद है ना, है मौजूद, गर्दन तो हिला रहा, देखा है किसी ने? क्यों? इसीलिए कि कुरान को बंद करके रख दिया, जुजदान में रख के, जुजदान पे बेरेंटे बना के, सजा के, इतर लगा के रख दिया। उतारते कब? जब लड़ाई झगड़ा हुआ, कुरान ले आओ, हाथ रख के बताओ सच बोल रहे हो गलत, यही करते हैं ना। कुरान हाथ रख के बताओ, इसलिए कुरान है। बेटी को विदा कर रहे हैं, कुरान ले आओ, इसके साए में विदा कर दो, सर के ऊपर, ऊपर पकड़े हुए, नीचे से बेटी गुजर रही है। कुरान इसलिए आया है? नहीं, कुरान कौल और कसम लेने के लिए नहीं, कुरान अहद और पैमान लेने के लिए नहीं, कुरान पढ़ने के लिए है, कुरान समझने के लिए है और कुरान अमल करने के लिए। कुरान मालूमात का ऐसा खजाना है कि जो हो चुका है वो कुरान में है, जो इस वक्त हो रहा है वो कुरान में है और जो कयामत तक होने वाला है वो कुरान में है। कुरान उठाकर तो देखो, जितने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम गुजर चुके हैं, अगर देखना चाहते हो वो कैसे रहते थे, क्या उनका दौर था, कुरान में है। बड़ी से बड़ी चीज कुरान में है, छोटी से छोटी चीज कुरान में है। जानवरों में सबसे बड़ा किसे कहोगे? जिससे के लिहाज से, जिस्म के लिहाज से क्या है? हाथी है। सूरह फील कुरान में है या नहीं है? और सबसे छोटी चीज क्या है? क्यूटी सूरह नमल है या नहीं? बड़ी से बड़ी चीज, छोटी से छोटी चीज। दरियाओं का जिक्र कुरान में है, समंदरों का जिक्र कुरान में है, याकूत और मरजान कुरान में है, दिन का जिक्र कुरान में है, रात का जिक्र कुरान में है, इंसानों का जिक्र कुरान में है, हैवानों का जिक्र कुरान में है, फरिश्तों का जिक्र कुरान में है, जिब्रील मीकाईल का जिक्र कुरान में है, सारे अंबिया का जिक्र कुरान में है, सबसे बढ़कर हमारे आका का जिक्र कुरान में। किसी ने पूछा सरकार के अखलाक कैसे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक कैसे थे? कितना अजीब सवाल है, और उसका जवाब कैसा होगा? अखलाक जो है वो इतनी छोटी सी चीज नहीं है, इसमें पूरी जिंदगी समा जाए। कैसे चलते थे, कैसे फिरते थे, उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, बोलते थे, गुफ्तगू करते थे। उम्मुल मोमिनीन ने अगर वो बताने पर आती तो कितना लंबा जवाब हो जाता, हुजूर के फजाइल बयान करती, हुजूर के खसाइल बयान करती, हुजूर के आदात करीमाना बयान करती, पूरी सीरत बयान करना मुश्किल था। उम्मुल मोमिनीन ने बेहतरीन जवाब दिया, कहा क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? हुजूर के अखलाक कुरान है, अगर देखने हैं कुरान उठाकर देखे। रसूल का चलना कुरान है, रसूल का बैठना कुरान है, रसूल की सीरत कुरान है, रसूल का बोलना कुरान है, पूरी जिंदगी कुरान है, एक बोलता कुरान है, एक खामोश कुरान। रसूल ने कुरान की फजीलत बयान फरमा दी और कुरान ने रसूल के फजाइल बयान कर दिए। सब कुछ कुरान में है। और कुरान की एक आयत वला रतबिम वला याबिस इल्ला फी किताबिम मुबीन, कुरान ने फैसला कर दिया हर खुश्क और तर कुरान में है। अब आप जायजा लें, पूरी कायनात में जितनी चीजें हैं, पूरी दुनिया में किसी एक चीज का नहीं कह रहा, बल्कि मैं ये कह दूं कि इस जमीन और आसमान के दरमियान जितनी चीजें हैं या तो खुश्क है या तर है, बस इसके अलावा तीसरी चीज नहीं, या खुश्क है या तर है। कुरान ने कहा वला रतबिम वला याबिस, कोई खुश कोतारा ऐसा नहीं इल्ला फी किताब मुबीन जो कुरान में ना हो। हमने हर चीज को कुरान में बयान कर दिया है बशर्ते कि कोई इसको पढ़ने वाला हो, कोई इसको समझने वाला हो और कोई इस पर अमल करने वाला हो। तो ये कुरान का महीना है, रमजान मुबारक कुरान का महीना है। जितना हो सके कुरान पढ़िए, जितना हो सके इसको समझने की कोशिश कीजिए और जितना मुमकिन हो कोशिश कीजिए कि इस पर अमल करें ताकि इस दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। ये मैंने इसके साथ साथ चीजें बयान कर दी। अब तीसरी चीज एतिकाफ। उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम हर साल रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ फरमाया करते थे। आपने इस मामूल को हमेशा जारी रखा यहां तक कि सरकार ने विसाल फरमाया। हुजूर के बाद सहाबा एतिकाफ करते थे, उम्मातुल मोमिनीन एतिकाफ करते थे। यह सिलसिला वहीं से चला रहा है। एतिकाफ सुन्नत मौकदा अलल किफाया। अगर किसी बस्ती में किसी मोहल्ले में किसी ने एतिकाफ नहीं किया सबके सब गुनाहगार। जितने इलाके वाले हैं जितने बस्ती वाले हैं सब गुनाहगार। और अगर किसी एक ने कर लिया सबके सब बरी जिम्मा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 10-20 साल से यानी 10-20 साल पहले ऐसी कैफियत नहीं थी लेकिन अब ये कैफियत है कि एतिकाफ करने वालों में तादाद में इजाफा हो रहा है और उसमें नौजवानों की भी तादाद कसीर है। पहले तो बूढ़े हजरात ही एतिकाफ करते थे लेकिन अब बहुत से नौजवान भी कोशिश कर रहे हैं इसमें। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी जरूरी है और वो ये है कि शौक में लोग बैठ जाते हैं, खास तौर पे नौजवान जो बूढ़े हजरात हैं उनको तो पता है। अब जाहिर है इंसान की आदत है घूमने फिरने की, खाने पीने की, बोलने की। बोलने की तो आदत ऐसी है कि कोई आदमी चुप रह नहीं सकता। किसी से कहते हो कि यार 10 मिनट चुप हो जाओ उससे पहले ही बोल देगा। बोलना जो है ना बहुत आसान है। हाथ थक जाते हैं, पैर थक जाते हैं, दिमाग थक जाता है, जबान नहीं थकती। इतना सा गोश्त का लोथड़ा है चलता ही रहता है। और सरकार ने फरमाया जिसने इसको काबू कर लिया उसने सबको काबू कर दिया। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ना अपनी जबान को पकड़ के खींच रहे। लोगों ने कहा क्या कर रहे? कहा यही तो सबसे बड़ा फितना है। अगर ये काबू में आ गया तो समझो सारे फितने खत्म हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत से लोग शौक में बैठ जाते हैं लेकिन जब एतिकाफ में बैठते हैं तो उनको चाहिए कि इसके मुताबिक मालूमात हासिल करें। सबसे पहले मस्जिद के हुदूद का तायुन करने के मस्जिद कहां तक है। वुजू खाना इसमें शामिल नहीं। रफाए हाजत के लिए आप जा रहे हैं वो इसमें शामिल नहीं है। दरवाजे के बाहर सीढ़ियां इसमें शामिल नहीं है। कोई लोग जाके ये भी तो मस्जिद है हम खड़े हो गए नहीं। अगर इस तरह होगा तो आपका एतिकाफ टूट जाएगा। मस्जिद की जो हुदूद है बगैर किसी जरूरत शरई के उससे बाहर नहीं निकले। मस्जिद में रहें, फजूल कोई से अपने आप को बचाइए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में यानी 10 दिनों में इतिकाफ किया उसको 2 हज और 2 उमरे का सवाब। कितनी बड़ी फजीलत है 2 हज और 2 उमरे का सवाब। तो जब इतना बड़ा सवाब आपको मिल रहा है तो चाहिए कि उसके पूरे आदाब, उसकी शराइत, उसके अरकान, उसके साथ आप ये कर। इसकी मिसाल ये समझिए, एक आदमी एक गरीब फकीर मिस्कीन किसी दौलतमंद के दरवाजे पे जाके बैठ जाए, किसी सेठ के दरवाजे पे जाके बैठ जाए, उससे कुछ मांगे तलब करे और कहे जब तक नहीं देगा मैं नहीं टलूंगा, मैं तेरे दर पे आकर बैठ गया हूँ, बिस्तर बोरिया बांध के बैठ गया हूँ, जब तक नहीं देगा नहीं टलूंगा, یہی مثال موتقف کی ہے, یہی مثال موتقف کی ہے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر, بیوی بچوں کو چھوڑ کر, اہل و عیال کو چھوڑ کر, عزیز و رشتہ داروں کو چھوڑ کر, سب کو چھوڑ کر اللہ کے در پہ آ کر بیٹھ گیا ہے. مولا دے گا تو ٹلوں گا ورنہ نہیں ٹلوں گا, نہیں ٹلوں گا. اور اس خالق و مالک کی شان یہ ہے کہ جو اس کے در پہ آ جاتا ہے وہ خالی نہیں لوٹاتا, جھولی بھر کے دے دیتے. اسی لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنا دی کہ جس نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا اس کو دو حج اور دو عمروں کا ثواب. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اعتکاف کیا اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھا یعنی بچایا, گناہوں سے بچایا, اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی کہ ایسا محسوس ہوگا کہ نیکیاں اسی نے کی ہیں اور ان کا کوئی حساب نہیں, بے شمار نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی. بے شمار نیکیاں انسان کر بھی نہیں سکتا, صرف اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے, فحش گوئی سے بچا لے اور اعتکاف کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے کرے, اس کو بے شمار نیکیاں ملیں گی. تیسری چیز یہ ہے, بعض حضرات جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو فضول باتیں آپس میں شروع کر دیتے ہیں, ادھر ادھر کے قصے شروع کر دیتے ہیں, ٹائم نہیں گزرتا. ظاہر ہے گھر میں ہے تو ٹائم گزر جاتا ہے, بازار میں ٹائم گزر جاتا ہے. اب مسجد میں ایک جگہ آپ بیٹھے ہیں, اس کو بلا لیا, اس کو بلا لیا, بیٹھ کر باتیں شروع کر دیتے. اس طرح اگر آپ کریں گے تو سمجھے آپ کا وقت ضائع ہو رہا. اس کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ 10 دن کا آپ اپنا شیڈول طے کر لیں, مجھے ان 10 دنوں میں کیا کرنا ہے, 10 دنوں میں کیا کرنا ہے. سب سے پہلے کی ایک کلام پاک مجھے ان 10 دنوں میں ختم کرنا ہے, ایک کلام پاک. اب اس کو آپ بلکہ 10 کے بجائے 9 دن آپ رکھیں, اگر 29 کا چاند ہو گیا تو 9, ٹھیک ہے نا. اور لوگ بےچارے اتنے تھک جاتے ہیں کہ 29 تاریخ کو بستر لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں, آج چاند ہوگا ضرور. وہ کہے گا بھائی ابھی کمیٹی نہیں بیٹھی ابھی شام, نہیں نہیں آج ہوگا, دیکھ لیں. سب بان بون کے رکھ دیا, کچھ لوگوں نے گھر میں بھیج دیا, دعا کر رہے ہیں اللہ مفتی منی پر رحمان اعلان کرتے ہیں آج چاند ہوگا. ایسا نہیں کرے, کوشش کرے کہ پورے 10 دن آپ کو مل جائے. تو آپ 9 دن کا حساب رکھے کہ 9 دن میں مجھے کلام پاک مکمل کرنا. اس کے بعد 7 لاکھ مرتبہ استغفار پڑھیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اس کے بعد 7 لاکھ مرتبہ اللہ الصمد پڑھیں. یہ تمام وظائف ہیں, یہ اپنا شیڈول طے کر لیں. آپ کو فرصت نہیں ملے گی بات کرنے کی, کیونکہ انسان کے سامنے اگر ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ مجھے یہ یہ کرنا ہے, پھر وہ وقت ضائع نہیں کرتا. اور دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہے, انسان کی فطرت ہے کہ ایک کام کرتے کرتے اکتا جاتا ہے, ایک کام کر رہے ہیں طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہو گئی. مثلا آپ استغفار پڑھ رہے ہیں, پڑھتے پڑھتے تھک گئے, اپنی مصروفیت کو چینج کر دی. اگر استغفار پڑھتے ہوئے تھک گئے, قرآن کریم کھول کے بیٹھ جائیے, تلاوت شروع کر دی. اور اگر اس سے سیر ہو گئے, نفل شروع کر دی, وہ پڑھ چکے, اللہ الصمد شروع کر دی. کہنے کا مقصد یہ کہ خالی وقت ضائع نہ کرے, اور جب تھک جائے تو سو جائے. روزے میں سونا بھی عبادت ہے, روزے میں سونا بھی عبادت ہے. اس پہ زیادہ لوگ گردن ہلا رہے ہیں, سب کو پسند آئے گی عبادت, روزے میں سو گئے آرام سے عبادت ہو رہی ہے, یہ صحیح عبادت ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ کوشش بھی کریں, محنت بھی کریں. اور اس میں کیونکہ آپ ہر چیز سے بالکل الگ ہو کر بیٹھے ہیں, تو خاص طور پہ اپنے لیے دعا کریں, اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کریں, اپنے شہر کراچی کے لیے دعا کریں, اپنے ملک پاکستان کے لیے, اور اس کے علاوہ پورے عالم اسلام کے لیے دعا کریں. اس میں کیا ہوگا کہ یہ شیڈول جب یہ منتخب حضرات جو لوگ روزانہ جو لوگ ہر سال بیٹھتے ہیں ان کو تو طریقہ معلوم ہے, لیکن جو پہلی مرتبہ بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ جس طرح میں نے بتایا اس طرح کریں. یہ 9 دن اس طرح گزریں گے, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے گزر گئے. اصل میں جو تاہٹ پریشانی ہوتی, اس لیے کوئی کام نہیں ہوتا, کیا کام کرے. कोई काम नहीं है ना, सोना है, पढ़ना है या खाना है, और तो कुछ नहीं करना है। इफ्तार के बाद तो खाना ही खाना है, और दिन में जाहिर खाना नहीं है तो या तो सोना है या फिर पढ़ना। तो आप पढ़ने को, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुरान करीम नहीं पढ़ा, और कुछ ऐसे हैं जो देख कर पढ़ सकते हैं। तो जो हजरात देख कर पढ़ सकते हैं वो कोशिश करें कि इन 9 दिनों में एक कलाम पाक मुकम्मल कर दे। तो कम से कम जिंदगी में एक कलाम तो मुकम्मल हो जाएगा, नामे अमान में ये तो लिखा जाएगा इसने एक कलाम पाक पढ़ा था। और उसकी फजीलत सरकार ने फरमाया जिसने एक आयत पढ़ी, बल्कि एक हर्फ जिसने पढ़ा, 10 नेकियां उसके नामे अमान में लिख देते। अलिफ लाम मीम, तो अलिफ लाम मीम पर 10 नेकियां नहीं है, अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। जब सिर्फ अलिफ लाम मीम कहा 30 नेकियां नामा या माल में, 30 नेकियां सिर्फ अलिफ लाम मीम कहने से। जो पूरा रुकू पढ़ जाए, जो पूरा पारा पढ़ जाए, जो पूरा कुरान पढ़ जाए, उसकी नेकियों का हिसाब कोई लगा सकता? तो ऐसा मौका जब हमें मिला है तो हमें चाहिए कि इस मौके पर इसको गनीमत समझें, अपने एतिकाफ को खराब ना होने दें, फजूल गोई में, फजूल बातों में इसको जाया ना करें। कुरान पढ़ें, तिलावत करें, नवाफिल पढ़ें, अस्तगफार पढ़ें, ये तमाम चीजें करें, टाइम भी गुजर जाएगा, आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी और नामे अमाल में नेकियों का इजाफा होगा। ये तमाम चीजें, ये गुजारिश मैंने आपके सामने पेश कर दी। अब इफ्तार का वक्त क्योंकि करीब है तो लिहाजा हम सब मिलकर दुआ कर लें, और इस दुआ के दौरान जो आप हजरात के लिए ऊपर एहतमाम भी है इफ्तारी का ऊपर, क्योंकि ये वक्त भी बड़ा मकबूलियत का है, जिस वक्त इफ्तार का वक्त होने वाला होता है तो बड़ी मकबूलियत का वक्त होता है, उस वक्त भी हमें चाहिए कि हम ऐसे मौके पर दुआ करें। लेकिन ऐसे मौके पे हम लोग अपने दस्तखान से जाके अपनी प्लेट भरने के चक्कर में रहते हैं, ये भी डाल, ये भी डाल, सब पहले से तैयार करके रख लो ताकि फटाफट शुरू कर। तो आइए दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक के सदके में हम सब के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे सजदों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे रोजों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारी तरावियों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे इतिकाफ को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे कुरान पढ़ने और कुरान सुनने को कबूल फरमा, या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को इस माह मुबारक में ज्यादा से ज्यादा नेक आमाल की तौफीक अता फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, हमारे ये मुसलमान भाई जहां भी जिस मस्जिद में भी इतिकाफ के लिए बैठे हैं, मौला अपने हबीब पाक साहिब लौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में उन सब के इतिकाफ को कबूल फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, हम सबको कुरान पढ़ने, इसको समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, हम सबको रमजान मुबारक के पूरे पूरे फ़ैज़ो बरकात से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, इस माह मुबारक के सदके में हमारे जो मुसलमान भाई बीमार हैं, मौला उनको सेहत कामिल अता फरमा। जो किसी परेशानी में मुब्तला हैं, उनकी परेशानियों को दूर कर। जो कर्ज़दार हैं, उन्हें बारे कर्ज़े से दोषी फरमा। जो बे औलाद हैं, उन्हें नेक औलाद अता फरमा। जो साहिब औलाद हैं, उनकी औलाद को उनका फर्माबरदार अता फरमा। हमारे अहले सुन्नत के जय्यद आलिम दीन अल्लामा सैयद शाह तुराबुल कादरी दामत बरकातुहुम अलिया अदीन हैं, तमाम हजरात खुलूस दिल के साथ उनके लिए दुआ फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सेहत कामला अता फरमाए और उनका साया तमाम अवाम अहले सुन्नत पर तादीर कायम व दाइम। ऐ रब्बुल आलमीन, जिन हजरात ने आज की इस महफिल का इनेकाद किया है, हल्का अशरफिया गुलबहार, इनके नाज़मीन, नायक नाज़मीन, तमाम कारकुनान, जिन लोगों ने दामे दिरहमे सुखने कदमे जिस तरह भी इस महफिल के इनेकाद में हिस्सा लिया है, इफ्तार का और दीगर चीजों का इंतजाम किया है, मौला इन सब के नेक कामों को अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। जिस खुलूस और मोहब्बत के साथ इन्होंने इत्तेमाम किया, अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। इन सब के इल्म में, अमन में, उमर में बरकत अता फरमा। इन सब के रोजगार में तरक्की अता फरमा। इन सब की जाहिरी, बातनी, रूहानी, जिस्मानी बीमारियों को, परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर फरमा। हमारे अहले सुन्नत के एक जय्यद आलिम दीन अल्लामा सलीम अब्बास नक्शबंदी साहब
आपको मालूम होगा गुज़िश्ता दिनों उन पर कातिलाना हमला हुआ, उनके लिए भी दुआ फरमाएं, अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत कामिला अता फरमाएं और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ उम्र तवील अता फरमाएं। اے اللہ العالمین علماء اہل سنت کی حفاظت فرما، مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرما، عوام اہل سنت کی حفاظت فرما، ہمارے ملک سے تخریب کاری کا خاتمہ فرما، اس ملک میں بسنے والوں کے دلوں میں آپس میں خلوص اور محبت پیدا فرما۔ اے اللہ العالمین تمام مسلمانوں کی عزت اور مال اور جان کی حفاظت فرما، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، برما کے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، جو شہید ہو گئے ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا مبالا فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ اور اسلام پر موت عطا فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرما۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحي القيوم۔ سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔